दिन भर तारीख 16 जुलाई दिन शनिवार। मैं हूँ मोहनलाल शर्मा
और मैं हूँ विनीत खरे।
तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद बड़े सेना अधिकारियों समेत करीब 3000 बागी सैनिक गिरफ्तार, 160 से ज्यादा मौतें।
मिलिट्री प्लेन वॉर प्लेन भी हवा में नीचे लो लेवल पे राउंड मार रही थी, फिर अपार्टमेंट के ऊपर से जा रहा था, गोलियां चल रही की आवाज आ रही थी, तो लाइक थोड़ा हम भी डर गए थे।
कार्यक्रम में हम बात करेंगे तख्ता पलट के कारणों की और राष्ट्रपति अर्दोगान के भविष्य की।
भारत प्रशासित कश्मीर में जारी हिंसा के बीच मीडिया दफ्तरों पर पुलिस के छापे।
रात को जब अखबार छप रही होती है उस वक्त पुलिस वाले आए, प्रिंटिंग की मेटेलिक प्लेट न्यूज़पेपर की कॉपी वो सीज कर ली और कुछ स्टाफर्स इंक्लूडिंग फोरमैन को उठा के ले गए।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। तुर्की में सरकार ने कहा है कि देश में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद सेना के 3000 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इतने ही जजों को उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। तख्ता पलट की ये कोशिश शुक्रवार की रात को शुरू हुई जब बागी सैनिकों ने टैंकों और हेलीकॉप्टरों को अपने कब्जे में ले लिया। राजधानी अंकारा और इस्तांबुल में रात भर धमाकों और गोलीबारी की आवाज़ें आती रहीं। सरकार के मुताबिक इस दौरान 161 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर आम लोग हैं। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। दूसरी तरफ ग्रीस का कहना है कि तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश के बाद तुर्की की सेना का एक हेलीकॉप्टर उसके उत्तरी इलाके में उतरा है। इसमें सवार 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने वहां राजनीतिक शरण मांगी है। तुर्की का कहना है कि वो इन लोगों के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय नागरिकों से तुर्की न जाने को कहा है। फ्रांस के गृह मंत्री बर्नार काजनोव ने कहा है कि गुरुवार को नीस में हमला कर 84 लोगों की जान लेने वाला व्यक्ति शायद हाल ही में कट्टरपंथी बना था। उन्होंने कहा कि नीस हमले के बाद एक नई तरह की चुनौती पैदा हुई है जिससे निपटना खासा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हमारा सामना नए तरह के हमलों से है। जिस व्यक्ति ने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया उसके बारे में खुफिया एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं थी, ना तो उसकी कोई ऐसी गतिविधि रही और ना ही कट्टरपंथी विचारधारा से उसका जुड़ाव देखा गया था। ऐसा लगता है कि हाल ही में वो कट्टरपंथ की तरफ गया। ये थे फ्रांस के गृह मंत्री काजनोव के शब्द। उधर फ्रांस की पुलिस ने नीस हमले के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कहा कि उसके एक अनुयायी ने नीस में हमला किया। आईएस ने उन सभी देशों में हमला करने को कहा है जो सीरिया और इराक में उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में विवादित सोशल मीडिया हस्ती कंदील बलोच की उनके भाई ने हत्या कर दी है। पुलिस इसे इज्जत के नाम पर हत्या मान रही है। पेशे से मॉडल कंदील बलोच अपने विवादित बयानों और ख्यालात की वजह से चर्चा में रहती थी। उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी। पुलिस का कहना है कि कंदील की गला दबाकर हत्या करने वाला उनका भाई फरार है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पेमा खांडू को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुना गया है। खांडू ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और जल्द ही राजभवन से शपथ ग्रहण का समय तय किया जाएगा। और अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अफ्रीकी नेता रवांडा की राजधानी किगाली में जुट रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा
और मैं हूं विनीत खरे।
इससे पहले कि आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपसे माफी कि आज का दिन इंडिया बोल का होता है और आज मेडिकल लापरवाही पर हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन तुर्की में तख्ता पलट की कोशिशों के बीच 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस बड़ी खबर की विस्तार से जानकारी के लिए इस विषय पर इंडिया बोल कार्यक्रम फिर कभी चर्चा हम करेंगे तुर्की की। मेरे साथ विश्लेषण के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा। तुर्की के इतिहास में यह चौथा मौका था जब तख्ता पलट की कोशिश की गई। राजधानी अंकारा में बागी सैनिक सड़कों पर उतरे और ये बागी राष्ट्रपति की सरकार को, रिचप तैयब की सरकार को हटाकर उस पर खुद कब्जा जमाना चाहते थे। अंकारा इस्तांबुल की जमीन पर टैंक उतरे, आसमान पर सेना के विमान ने गोलियां बरसाई। अब तक 161 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई आम नागरिक हैं। हिंसा में 1,440 लोग जख्मी हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा बागी सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली ने तख्ता पलट की कोशिशों को देश के लोकतांत्रिक इतिहास में काला धब्बा करार दिया। तुर्की के प्रधानमंत्री कह रहे थे, मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे देश, शुक्रवार 15 जुलाई की रात तुर्की के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने विद्रोह में हिस्सेदारी की है वो कुर्दिस्तान के चरमपंथी संगठन PKK से भी बुरे चरमपंथी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि षड्यंत्र रचने वाले करीब 20 लोगों को मार दिया गया है, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। क्या कुछ हुआ, पहले सुनते हैं अमर शर्मा से, उसके बाद हम विश्लेषण भी करेंगे।
तख्ता पलट की कोशिशें कल शाम से ही नजर आने लगी थी, जब सेना के टैंक बड़े शहरों के प्रमुख स्थानों पर आकर खड़े हो गए और हवा में जंगी जहाज चक्कर काटने लगे। अंकारा स्थित फोटो पत्रकार पियरे कैस्टेलानो के मुताबिक शुक्रवार रात को राष्ट्रपति अर्दोवान के टीवी पर समर्थन की अपील के बाद तुर्क नागरिक सड़कों पर निकल आए। उन्होंने बताया कि सब कुछ अचानक हुआ। तुर्की के लोगों और सेना के बीच बीती रात से पहले तक एक मजबूत संबंध था। ऐसे में जब सेना ने लोगों पर गोली चलाई तो सब हैरान रह गए। लोग सड़कों पर, मुख्य चौराहों पर और टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। हर ओर खून खराबा था। रात कई घंटों तक तुर्की के सैकड़ों सैनिकों ने राजधानी अंकारा और इस्तांबुल में महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा किए रखा। तुर्की की समाचार एजेंसी एनाडोलू का कहना है कि तख्ता पलट की कोशिश करने वाले बागी सैनिकों ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप पर भेजे संदेशों में उन्होंने कहा कि इस्तांबुल की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा और सरकार के इमरजेंसी संचार का वीडियो लिंक काट दिया जाएगा। इस्तांबुल में स्थानीय लोगों ने तख्ता पलट की कोशिश की निंदा की। अली यावूज कहते हैं,
बीती रात मेरे भतीजे की मौत हो गई। वो बिना किसी कारण के मारा गया। मैं उसके जनाजे में शामिल होने जा रहा हूँ। हमारे देश के साथ वो जो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए।
एक स्थानीय नागरिक ने कहा, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। लोगों ने सैनिकों पर आरोप लगाया है, बहुत से लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। वे लोग हवा में गोलियां नहीं चला रहे थे, वे सीधे लोगों को निशाना बना रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वे लोग सैनिक हैं। वहीं सवान अलग बताते हैं,
zalimlik başka bir şey değil. Güzelim ülkeyi bu hale getirenlere yazıklar olsun diyor.
ये क्रूरता है, हमारे खूबसूरत देश के साथ जिन्होंने ऐसा किया उन पर लानत है। उन्हें कहने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह के अनुयायी कहने पर शर्मिंदा होना चाहिए। हमारे खूबसूरत देश के साथ ऐसा करने का हक किसी के पास नहीं है। लानत है उन पर।
कार्यवाहक सेना प्रमुख जनरल उमित डुंडार ने टीवी पर कहा कि बागी सैनिकों ने कई सैन्य कमांडरों को बंधक बना लिया है। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश को पूरी तरह दबा दिया गया हो। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने तुर्की के सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा कि राजधानी अंकारा में सेना के मुख्यालय को पूरी तरह कब्जे में लेने का अभियान अभी जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल रक्षा मुख्यालय के परिसर का चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। तुर्की के सरकारी टीवी पर बागी सैनिकों की एक टुकड़ी आत्मसमर्पण करते दिखी। इस्तांबुल का बॉस्फोरस ब्रिज शुक्रवार शाम से इन लोगों के कब्जे में था। टीवी में ये लोग हाथों को सर पर रखते चलते दिखे।
हाथों पे सर पे रखते हुए दिखे थे। अब्दुल हक पिछले 15 सालों से इस्तांबुल में रह रहे हैं। सुनिए उनकी आंखों देखी उन्हीं की जुबानी।
रात में 2 बजे तक गोलियां चल रही थी, आवाज आ रही थी तो हम भी सुने थे। उसके बाद टेलीविजन में देखा था, पब्लिक अप्रोच कर रही थी मिलिट्री के तरफ। मिलिट्री वाले ने ऊपर फायर किए हवा में।
तो जब हवा में फायर की तो उसके बाद भगदड़ मच गई।
बहुत डर गए थे। और F-16 मिलिट्री प्लेन, वॉर प्लेन भी हवा में नीचे लो लेवल पे राउंड मार रही थी, वो भी थोड़ा लोग डर गए थे। मेरा अपार्टमेंट के ऊपर से जा रहा था तो गोलियां चल रही की आवाज आ रही थी तो लाइक थोड़ा हम भी डर गए थे।
अब्दुल हक साहब, मुझे ये बताइए कि इस्तांबुल की सड़कों पर क्या चल रहा है?
कल इस्तांबुल टाइम 10 बजे को मिलिट्री वाले ने इस्तांबुल का जो मेन यूरोप एंड एशियन साइड का डिवाइड करने का एक ब्रिज है उसका बंद कर दिए थे। और इस्तांबुल अटाटुर्क एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिए थे। पीपल वेर गेटिंग देन दे अनाउंस्ड मिलिट्री कोप। उसके बाद प्रेसिडेंट इसमें मीडिया में आया है, टाइप मिस्टर टाइप एर्दोगन कॉल किया है पब्लिक को, तो सड़क में आ जाइए करके। तो पब्लिक आके मिलिट्री एंड 2-3 घंटे थोड़ा टेंशन था कि लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है करके। इट वॉज अ फेक मिलिट्री कूप, मिलिट्री में माइनॉरिटी रेबल्स जो थे तो उन लोग कुछ मिलिट्री कूप करने के लिए कोशिश किए लेकिन फेल हुआ है। लॉट ऑफ फ्लाइट्स वर कैंसल्ड। प्रेसिडेंट ने बोला कि स्ट्रीट से मत जाओ, घर पे मत जाओ, आज रात तक थोड़ा रुक जाइए करके बोल रहे। लुक्स एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन फॉर वर्क आल्सो।
जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ के जो पुलिस का रोल कैसा था?
जब डोमेस्टिक पुलिस नहीं होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ये बहुत जिम्मेदारी से काम किए पुलिस वाले ने, जाके वो जो मिलिट्री जो आए थे ना ऑर्डर लेकर आए थे ना, तो मिलिट्री वाले को भी पता नहीं क्यों पब्लिक के अगेंस्ट जा रही है करके, मिलिट्री को भी पता नहीं था। तो अगर पुलिस जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे होते तो पब्लिक उनको मिलिट्री लोग मिलिट्री वाले को मार देते थे। जिम्मेदारी से उन लोग आके बताए भाई ये मिलिट्री वाले को भी पता नहीं है। वेरी वेल डन बाई टर्किश पुलिस।
ये थे अब्दुल हक जो कि पिछले 15 सालों से इस्तांबुल में रहते हैं और बिजनेसमैन है। विनीत,
प्रोफेसर महापात्रा के पास चलते हैं। प्रोफेसर महापात्रा, तख्ता पलट की कोशिश हुई है, ये ताज़ा कोशिश है, इसका क्या कारण देखते हैं और आप और क्यों विफल हुआ ये तख्ता पलट?
देखिए, पहले मैं कहूँगा कि विफल क्यों हुआ। विफल होने के पीछे ये कि पहले जिस तरीके से मिलिट्री को होता था 1960 में, 1971 में, 1980 12 सितंबर में, वहाँ पे एक वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता था। उनके साथ साथ जो आर्मी चीफ होते थे उन पे वो उनको लीडर मानते थे, एक संगठित रूप से वो काम करते थे, तब जाके सत्ता बदलने में इजी होता था। ये एक है। दूसरी बात है, जो पहले मिलिट्री को होता था, जो सिविलियन पार्टी थे वो इतने ही स्ट्रांग नहीं थे जो आज स्ट्रांग है। डेमोक्रेसी जो है टर्की में इतना बड़ी स्ट्रांग और इतना वो नहीं था जो आज दिखाई देता है। जब से लास्ट जो मिलिट्री कू हुआ था 1980 के बाद, अभी तक तो कू नहीं हुआ है। बीच में 1997 में एक सॉफ्ट कू हुआ था जिसमें जो जो आर्मी चीफ है उनको एक इंस्ट्रक्शन देते, उस टाइम एक इस्लामिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कि आप जो रिफॉर्म ला रहे इनका हम विरोध करते हैं तो आप उसको हटा लीजिए, नहीं तो फिर मिलिट्री कू हो जाएगा। वो हट गया। लेकिन जब से ये पावर में आए हैं, इर्दोगन पावर में आए हैं 2002 दिसंबर के बाद ही, वो हर चुनाव में जीतते जा रहे हैं। इनके अपोज करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी इतना अभी तक स्ट्रांग नहीं है। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इस्लाम को एक बेस बनाते हैं। जैसा आपको पता होगा टर्की शुरू से एक सेकुलर कंट्री था। ये सेकुलर कंट्री बना 1920s में, जो बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री सेकुलर बने ही नहीं थे। एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में सेकुलरिज्म लाना, वहाँ पर लोगों को प्रैक्टिस करना, इसके साथ साथ जो अरबिक स्क्रिप्ट था उसको हटा के लैटिन स्क्रिप्ट लाना, वो गाँव घूम के उनको एक नया लैंग्वेज पढ़ा है, टर्किश लैंग्वेज पढ़ा है, जो टर्की कोई देश नहीं था, एक देश बना है अनातोलिया में, एक टर्की ओटोमन एम्पायर की एक सक्सेसर स्टेट है। तो एक जो नया स्वरूप उसने दिए है, ये 80 साल के बाद इर्दोगन जी ये कोशिश कर रहे हैं जो सेक्युलर बेसिस था उसको हटा के इस्लामिक बेसिस का लाया जाए, उनको आइडेंटिटी को नया तरीके से कैसे बना जाए,
जिसको आपको लग रहा है कि इसके कारण गुस्सा है।
इसी कारण में देश में एक गुस्सा नहीं है, देश में पोलराइजेशन है। कुछ लोग तो उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ भैया नया हमारा आइडेंटिटी बनेगा जो इस्लाम बेस्ड है, लेकिन उनको बहुत से लोग अपोज कर रहे हैं जो कि सेक्युलर आइडेंटिटी सबसे बेहतर नहीं था।
ये जो ताज़ा सत्ता पलट की कोशिश है उसके लिए राष्ट्रपति एर्दोगन ने इशारा किया है फतेहुल्लाह गुलेन की ओर। अमरीका में रहते हैं, कुछ उनके बारे में बताइए, कौन है वो और बड़ी फॉलोइंग है उनकी तुर्की में?
मैं खाली इससे पहले आपको बता दूँ, सेक्युलर फोर्सेज टर्की जिसको कहते हैं, ये है मिलिट्री, दूसरे है जुडिशियरी। अभी देखोगे मिलिट्री के पर्जिंग होते होते जुडिशियरी में 200 से करीब जजेस को हटा दिया है। ये सबसे बड़ी तीनों पिलर थे, मिलिट्री, हायर एजुकेशन एंड जुडिशियरी, उनको ये अटैक करते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनका अंदर रिजेंटमेंट है। फतेहुल्लाह गुलेन जो है ये एक रिफॉर्मिस्ट इस्लामिस्ट है। वो जिस तरीके इस्लाम बोलते हैं बेसिकली उसको कहते हैं कि वेस्टर्नाइज मॉडर्नाइज के इस्लाम बोलते हैं। ये एक तरीका जिसको कहते हैं कि एक ऑर्डर, इस्लामिक ऑर्डर को वो बिलोंग करते हैं। इन पर जो प्रहार हुआ तो अपने चूज करके वो अमेरिका चले गए, वहाँ पर इसको सेल्फ इम्पोज एग्जाइल में रह रहे हैं। ये उन्हीं के साथ थे एर्दोगन के साथ, लेकिन 4-5 साल से उनके साथ उनका डिफरेंसेस हो गया। इसके बाद वो कोशिश कर दो एर्दोगन जी कि किसी भी तरह फतेहुल्लाह गुलेन यहाँ पे टर्की में आ जाए, उनको ट्रायल होगा, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। जो फतेहुल्लाह गुलेन कहीं पुलिस का अंदर, आर्मी का अंदर अपना आदमी है, लेकिन कितने तक आप ये कह नहीं पाएंगे कि इस कूप में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना हाथ है, कहना मुश्किल है।
मना कर रहे हैं,
मना कर रहे हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस पॉसिबिलिटी आप
रूल आउट नहीं कर सकते।
मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का जिक्र कर दूं और आपसे महापात्रा साहब चर्चा जारी रहेगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने तुर्की के घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई है। ट्वीट करके कहा है कि ब्रितानी राजदूत दूतावास जो है वो स्थिति पर नजर बनाए हुए। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि तुर्की में स्थिरता और शांति की वो उम्मीद करते हैं। रूस ने भी तुर्की की स्थिति पर चिंता जताई है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि वो तुर्की में शांति की अपील करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में ब्रजेश उपाध्याय वॉशिंगटन से शामिल हो रहे हैं। विनीत,
ब्रिजेश, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो, सुबह से मैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार देख रहा हूँ और एक जो इंप्रेशन मुझे सुनने को मिल रहा है, अगर आप क्लैरिफाई कर पाएं कि अमेरिका में इसको लेकर बड़ा रिलीफ है कि ये जो सत्ता पलट की कोशिश थी वो पूरी नहीं हो पाई, नाकाम रही, इसको लेकर वहाँ किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं?
थोड़ा ये कहना जल्दबाजी होगी विनीत कि इस वक्त क्योंकि अभी किसी तरह की औपचारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इस अब से कुछ देर में राष्ट्रपति ओबामा अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम और फॉरेन पॉलिसी टीम के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर दी है, एक बगैर नाम लिए अमरीकी फौजी अधिकारी के हवाले से कहा है कि तुर्की के अधिकारियों ने जो इंसर्लिक हवाई बेस है जहां से अमरीकी फौज तुर्की के साथ मिलकर आईसिस के खिलाफ हमले करती है उस पर फिलहाल रोक लग दी है। कल रात में पेंटागन से हमारे पास जो खबर आई थी उसमें कहा गया था कि पहले की तरह ये जारी है ये हमले, लेकिन फिलहाल ये न्यूयॉर्क टाइम्स एक अधिकारी के हवाले से कह रहा है कि उस पर रोक लगी हुई है और अमरीका ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी चीज है कि आज वो अपने पूरे देश पर नियंत्रण करना चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है, या फिर जैसे पहले बीच में काफी मुश्किल से अमरीका ने इस एयरबेस पर का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें राजी किया था तो क्या आईसिस के खिलाफ कुछ पॉलिसी में कोई परिवर्तन तो नहीं आ जाएगा। जहां तक आप एक रिलीफ की बात कर रहे थे कि एक मुश्किल फैसला जरूर हो जाता है अमरीका के लिए अगर वहां सचमुच में कोई कू या तख्ता पलट हो जाता, क्योंकि अमरीकी कानून के तहत आप उस देश के साथ को जो अरबों डॉलर का हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवा रहे हैं आप नहीं दे सकते हैं। ये अलग बात है कि कई बार दूसरे तरीके ढूंढे गए हैं लेकिन जाहिर है काफी एक मुश्किल फैसला हो जाता कि किस तरह से तुर्की के साथ किस तरह के संबंध रखें और जवाब देना मुश्किल होता ओबामा प्रशासन के लिए।
ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर महापात्र, मैं आपके पास आऊंगा। तुर्की के लिए हम देख रहे हैं एक के बाद एक चुनौती आ रही है, आईसिस हो गया, उसके बाद से सीरियाई प्रवासी बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं रह रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी समस्या है, बम हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट पे ताज़ा हमला हुआ है, जो कुर्द प्रतिबंधवादी हैं, कुर्द प्रतिबंधवादी उनकी तरफ से खतरा बताया जा रहा है और अब ये ताज़ा तख्ता पलट की कोशिश, तुर्की के लिए कितने चैलेंजेस आ गए हैं?
बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जब से ये सीरिया में शुरू हुआ 2011 के बाद, जो तुर्की के साथ जो प्रॉब्लम था पहले, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम था, वहाँ पे एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन था, लेकिन हाल में 5 साल में इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि जो सीरिया में आपने जो इंटरवेंशन शुरू किया उनको लगा कि कहीं आसाद रेजिम ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, उनका कहीं इन्फ्लुएंस उस जगह पर आ जाएगा, वो हुआ नहीं। और इसके जगह पे जो इस्लामिस्ट का राइज हुआ इसने कहीं ना कहीं तुर्की की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पर्टिकुलरली जो इस्लामिक स्टेट की वॉरियर है जो उनको वहाँ पे पहुँचाना, उनके कोई घायल हो जाता है, कोई मर जाते हैं, उनको लेके उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, क्योंकि जो आप देखेंगे तुर्की इराक और सीरिया की बॉर्डर लगा हुआ है तो उस पर तुर्की इजीली उनको लेके उनको पहुँचाते हुए ट्रेनिंग भी कहीं इस जगह पे देते थे और वो कई घायल जो उनके जो वॉरियर हैं उनको लेके मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते थे। इसके छोड़ के कहीं तुर्की से पैसा भी जाता था, जैसे सऊदी के कुछ ट्रस्ट हैं उनको भी पैसा देते थे और कतारी जो उनका पैसा कहीं तुर्की के माध्यम से उनके पास जाता था। तो तुर्की कहीं ना कहीं ऑफिशियली नहीं कहते थे लेकिन अनऑफिशियल उनका इन्वॉल्वमेंट था। जब से ये शुरू हुआ इसके बाद होता है कि जो इस्लामिक फोर्सेज तुर्की के अंदर है वो भी कहीं ना कहीं इनक्रेज हो गए कि भाई कि एक तो सेकुलर कंट्री ऑफिशियल अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली कहते हैं हम सेकुलर हैं लेकिन उसके इडियोलॉजिकल बेस पे तुर्की के पहले बार एक चैलेंज आया कि क्योंकि ये इस्लामिस्ट फोर्सेस को सत्ता बदलने के लिए सीरिया में सपोर्ट किए, वो लेजिटिमेसी मिल गया जो वहाँ पे जो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट फोर्सेस थे ये भी बढ़ गए, ये भी कभी अगले से तुर्की की इस्लामिक स्टेट बन जाए। दूसरी बात है कि अपने जो एर्दोगान ये भी सोचना शुरू कर दिए कि जो कभी भी एक इस्लामिक स्टेट बनेगा उसको खाली बन जाए, क्योंकि जो न्यू ऑटोमन जो पॉलिसी कहते हैं जैसे ऑटोमन एम्पायर था वहाँ खलीफत इस्तांबुल में था, उनका भी कई सपने आ गया कि एक नया खलीफत बन जाए।
एक संक्षेप में सवाल पूछ रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो है इस देश का उसको कितना बड़ा खतरा है?
बहुत बड़ी खतरा है। जब से एर्दोगान ने 2007 से जब से ये इसको कहते क्रिपिंग इस्लामाइजेशन, वो ज़बरदस्ती कोई चीज़ उसको इम्पोज नहीं करते लेकिन जो कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स इसके सेकुलर करेक्टर लाया था टर्की को, वे कहीं ना कहीं अपने पॉलिसी से उसको चेंज करना, रिवर्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब वो आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए उनका जो पॉलिसी चलता है उसको जो सेकुलर फोर्सेस है जो एक जनरेशन दो जनरेशन बड़े हुए हैं उसको अपोज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो अनातोलिया के नीचे पार्ट में रहते हैं, जहाँ पे गाँव के इलाके में रहते हैं, वो इस तरीके फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए एर्दोगान बार बार चुनाव में जीतते हैं। लेकिन उनके अंदर मिलिट्री में अभी भी बहुत बड़ा एक साइजेबल फैक्शन है, वो इस तरीके के जो इस्लामाइजेशन को अपोज करते हैं, क्योंकि आप ये मत भूलिए टर्की का अंदर सुन्नी मेजोरिटी स्टेट है, लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी अलेवीज है कुर्द को तड़के, वो अलेवीज जो है ये सुन्नी मुस्लिम के बहुत बड़ा विक्टिम बन सकते हैं, जैसे भी पाकिस्तान में है। जब भी एक सुन्नी मेजोरिटी स्टेट में एक इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक बेस का एक देश के जो सोचा जाएगा, इसमें उनको सबसे बड़ी खतरा है। और दूसरी खतरा है कुर्द्स की, कुर्द को इनको कहा गया कि एर्दोगान कहे कि हम कुर्द का ओपनिंग करेंगे, कुछ का नेगोशिएशन करेंगे, इसका उनको इनके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, अभी तो कर ही नहीं पाए, परंतु वो क्या कर रहे हैं, कुर्द के ऊपर अटैक शुरू कर दिए। इसके साथ साथ देखेंगे जो कुर्दिश का नेशनलिज्म शुरू हुआ, जो आईएसएस का लड़ने वाले हैं कुर्द्स नॉर्दर्न इराक में, सीरिया में, ये लोग ये कहीं ना कहीं उनका नेशनलिज्म उस इलाके में स्प्रेड कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा एक चैलेंज।
बहुत संक्षेप में आने वाले दिन तुर्की के लिए कैसे होंगे, उतने ही चुनौती भरे होंगे, इतने और दिक्कतें बढ़ जाएंगी?
एक इस्लामिस्ट फोर्सेस, दो कुर्दिश सेपरेटिज्म, तीन होगा इकोनॉमिक, चौथा होगा मिलिट्री जुडिशरी, जो सेकुलर फोर्सेस है उनके कभी भी कोई पॉलिसी में उनका सहयोग नहीं रहे।
हालांकि अभी अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि कई हजार जजों को हटाया गया है, और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो सेना के बड़े अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया और सेना के अधिकारियों को भी हटाया जाएगा। प्रोफेसर महापात्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तुर्की की स्थिति का विश्लेषण किया, आप हमारे स्टूडियो में आए।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर, और कार्यक्रम में अब हम भारत की खबरों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कश्मीर की। विनीत,
भारत प्रशासित कश्मीर में हिंसा की घटनाओं के बीच पुलिस ने कई मीडिया दफ्तरों पर छापे मारे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बात की कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन से।
रात को जब अखबार छप रही होती है उस वक्त पुलिस वाले आए तो वहाँ पे जितने प्रेस के वर्कर्स थे, फोरमैन थे प्रेस में, उनको डराया धमकाया, वहाँ पे जो ये प्रिंटिंग की मेटेलिक प्लेट्स होती हैं वो सीज कर ली, मतलब और प्रिंटिंग मटेरियल और न्यूज़पेपर की कॉपीज वो सीज कर ली, और कुछ स्टाफर्स को इंक्लूडिंग फोरमैन को उठा के ले गए, बाद में उनको रिलीज कर दिया गया। और इसी तरह से सुना है राइजिंग कश्मीर के स्टाफ को भी, उनके भी प्रेस पे सिमिलर एक रेड हुआ और वहां से भी प्रेस वालों को उठाया गया, और बाद में सुनने में आया कुछ एक दो और अखबारें थी उनकी कॉपीज भी सीज की गई हैं और सर्कुलेशन उनकी बंद की गई है।
कारण बताया अनुराधा जी, क्या कारण था?
जो पुलिस वाले हैं वो कारण वारण कोई नहीं बताते हैं, वो तो बुलिंग टैक्टिक्स पे आ जाते हैं जब भी ऑपरेट करते हैं, और इसी तरह से ये पहली बार नहीं हुआ है, इसी तरह से 2010 में हुआ था, 2013 में हुआ था, और 2010 में कोई तकरीबन हफ्ता 10 दिन अखबारें छपी ही नहीं थी, उनने छापने नहीं दी, कर्फ्यू पासेस नहीं दे रहे थे स्टाफ वालों को, इसी तरह से डराया धमकाया जा रहा था। और 2013 में जब अफजल गुरु के एग्जीक्यूशन के बाद भी एकदम से वो कर्फ्यू लागू कर दिया गया और अखबारों को भी हर तरह से डराया धमकाया जा रहा था और उनको छापने नहीं दिया।
इस एक्शन के पीछे आप कारण क्या देखती हैं?
कारण तो यही है कि मीडिया को टोटली कंट्रोल करने का कारण है, एक मीडिया जो है वो अपनी प्रोफेशनली ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं और लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सरकार नहीं चाहती है कि लोग इन्फॉर्म्ड रहे, वो एक तरफा ओपिनियन दे रहे हैं, इंटरनेट वहाँ बंद है, फोन लाइन बंद हो रही हैं, और बहुत से इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा इफेक्टेड इलाके हैं, वहाँ से तो कोई फोन लाइन कम्युनिकेशन ही नहीं है, हमारा फीडबैक वैसे ही फिल्टर्ड था।
ये थी कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन, और इन छापों के कारणों के लिए मैंने सत्ताधारी पीडीपी के प्रवक्ता नईम अख्तर से बात की।
पता है कि एहसास है कि ये एक सही तरीका नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन उभर रही है कश्मीर में, इसमें इतनी सारी जाने गई, एक अनयूजुअल सिचुएशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, तो इसमें हमें ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाना पड़ा।
नहीं साहब, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे, अखबार छप नहीं रहे हैं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या
बात है। सही बात है, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस है, एक नतीजा है उस सूरत हाल का जो पैदा हो गई है।
लेकिन आप लेकिन मीडिया को
हमारी पैदा की नहीं हुए, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जानें बच जाएं और अमन वापस आ जाए।
मीडिया में क्या छप रहा है, इससे लोगों की जान कैसे बचेगी?
वो आप यहाँ होते तो आपको पता चलता कि किस किस्म की चीजें उसमें, काफी बहुत अच्छी चीजें भी छपती हैं, ऐसी चीजें भी छपती हैं जिनसे जज्बात परांगेख्ता हो जाते हैं, और जो जवान इसमें जो आप देख रहे हैं वो छोटी उम्र के हैं और वो अखबार देख के दूसरी चीज देख के।
ये कब तक चलेगा नई मंत्र साहब? आज अखबार नहीं छपे हैं, आज मार्केट से भी सुना है कि रिपोर्टें हैं कि अखबार उठा लिए गए हैं, तो ये कब तक चलेगा?
हमारी कोशिश होगी कि ये ज्यादा देर न रहे।
ये थे सत्ताधारी पीडीपी के प्रवक्ता नईम अख्तर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आइए भारत से निकलते हैं और रुख पाकिस्तान का करते हैं। पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में रही पाकिस्तान की विवादित मॉडल कंदील बलोच की हत्या कर दी गई है। कंदील बलोच अपने विवादित बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो के जरिए काफी सुर्खियां बटोर चुकी थी। कुछ दिन पहले उन्होंने बीबीसी से बातचीत की थी, तब उन्होंने क्या कहा था ये सुनिए।
मेरा ये बिलीव है कि जब आपने मरना है वो मरना है, जब आपकी लिखी हुई है ना जिस दिन, वो आपने मरना है। देखते भी हो, फिर गालियां भी देते हो, फिर बातें भी करते हो, फिर बुरा भला भी बोलते हो, फिर गॉसिप भी करते हो, दोस्तों में बैठ के मजाक भी उड़ाते हो, टाइम पास भी करते हो। ये क्या डबल स्टैंडर्ड लोग हैं ना। देखते भी हो, फिर मजाक भी उड़ाते हो, देखते क्यों?
कंदील बलोच की ये आवाज सुन रहे थे आप, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कंदील बलोच की हत्या कैसे हुई, किसने की, ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता अंबर शमसी से।
पुलिस का कहना है कि कंदील बलोच को का गला घोटा गया, उसको दबाकर मारा गया था, और उसका एक भाई है जिसको ऐसे मारा गया था, और वो खुद फरार है, मफरूर है, भागे हुए हैं। और वजह जो कुछ बताई जा रही है, शायद पैसों के लिए हो सकता है, शायद इस वजह से भी हो सकता है कि वो एक मौलाना साहब के साथ कुछ सेल्फीज लगाई थी, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वजह जो है अभी वाजे नहीं है।
जिस तरह से हमने इनके वीडियोस देखे हैं या पूरी दुनिया इनको जैसे जानती है, इनके बारे में बताएं।
कंदील बलोच 2014 में मशहूर हुई थी और सोशल मीडिया के जरिए ही मशहूर हुई थी। उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज शुरू किया था और जिस किस्म की वीडियोज वो लगाती थी, वो उनको एग्जिबिशनिस्ट की कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि वो अटेंशन हासिल करने की, तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो ऐसी वीडियोस थी जो पाकिस्तानी मुआशरे में शायद एक्सेप्ट नहीं होती, और इस वजह से उनके खिलाफ भी बहुत रिएक्शन था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उनको पसंद भी बहुत करते थे।
इन्होंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट टीम जीत जाती है तो वो निर्वस्त्र होंगी।
बिल्कुल, उन्होंने जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था इस साल, तो उन्होंने ये कहा था कि वो अपने कपड़े उतार देंगी, बरहना हो जाएंगी। ये भी एक उनकी वजह मशहूरी है। और उसके बाद भी उनकी जिंदगी के बारे में बहुत चीजें सामने आती रही। मीडिया जाहिर है उनको बहुत अटेंशन भी दे रहा। मिसाल के तौर पर भी हाल ही में मालूम हुआ था कि उनकी पहले शादी हुई थी, एक बच्चा भी है उस शादी से। कंदील बलोच का कहना था कि उनके जो शोहर थे वो उनको मारते थे और उनकी जबरदस्ती शादी की गई थी, बल्कि जो शोहर थे उनका कहना था कि ये लव मैरिज थी, पैसा मशहूरी चाहती थी इसलिए उसको छोड़ दिया। एक मौलाना साहब है, उसके साथ सेल्फी उन्होंने ली थी और वीडियो भी ली थी और वो अपने सोशल मीडिया पेजेस पे लगाई थी। ये मौलाना साहब जो है ये मशहूर हैं और इसकी वजह से उनको सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़े रहा था। खुद भी यही कहती थी कि वो अपनी जिंदगी जो है वो आजादी से जीना चाहती थी। इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान की, उनको खत भी लिखा था, उनको कहा था कि मुझे जान को खतरा है, मुझे थ्रेटनिंग मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया।
कंदील बलोच की पाकिस्तान में हत्या हुई, जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता अंबर शमसी। और कार्यक्रम में अब वक्त है कि हम मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लें।
बीबीसी समाचार तुर्की में सरकार ने कहा है कि देश में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद सेना के 3,000 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इतने ही जजों को उनकी ड्यूटी से हटाया गया है। सरकार के मुताबिक तख्ता पलट की इस कोशिश के दौरान 161 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर आम लोग हैं। दूसरी तरफ ग्रीस का कहना है कि तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश के बाद तुर्की की सेना का एक हेलीकॉप्टर उसके उत्तरी हिस्से में उतरा है, जिसमें 8 लोग सवार हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उसके एक अनुयायी ने फ्रांस के नीस में हमला किया था। इस हमले में 84 लोग मारे गए और पाकिस्तान में विवादित सोशल मीडिया हस्ती कंदील बलोच की उनके भाई ने हत्या कर दी है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। 1.5 घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तो फिलहाल मोहनलाल शर्मा को
और विनीत खरे को दे अनुमति के साथ दे अनुमति।
बहुत बहुत शुक्रिया।